भगवत स्वरूप ही सब चीजें दिखने लग जाए, उनसे मिलने की इच्छा हो जाए, तो वृक्ष हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, सभी भगवान ही भगवान दिखे। जैसे तस्वीर में देखते हैं, उस तरह सबकी आकृति में भगवान दिखे। आप कहेंगे कि दिखना बड़ा कठिन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अनेक आदमियों में जिस आदमी को ढूंढना होता है, तो उस आदमी का चित्र उनमें देखते हैं, ये है क्या, वो है क्या, ना हाँ ये है। इसी प्रकार से भगवान को सब में देखना चाहिए। छोटा बच्चा अपनी माँ को कई माताओं के बीच में देखना चाहिए, एक एक को देखता है, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, तो दौड़ के लपक के जाता है। ऐसे सब में भगवान का भाव हो। अपना जो प्यारा होता है वो बहुत याद आता है, जिसमें भगवान तो सभी के प्यारे हैं। जो दिखता है वो भगवान का रूप है, ऐसा विश्वास करने पर भगवान का रूप दिखने लग जाएगा। ऐसी बातें होनी चाहिए, खूब प्रेम बढ़े। प्रेम में प्रेम भी हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। विश्वास तो इतना अधिक हो जाए कि भगवान को प्रकट हुए बिना रहा न जाए। विश्वास करने के बाद तो सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। ऐसी बातें होनी चाहिए। जैसे कोई महात्मा किसी के साथ आ रहे हो, ध्यान से सुने, और हम उन्हीं महात्मा के पास ही जा रहे हो, वे महात्मा जी रास्ते में मिल गए, हमने पहले उन महात्मा जी को कभी देखा नहीं, और उन्हीं से ही उन्हीं महात्मा का नाम पूछ लिया कि महाराज वो महात्मा कहाँ है, हम उनसे बहुत जरूरी मिलना चाहते हैं, उनके पावन दर्शन करना चाहते हैं, हम उन्हीं के लिए रवाना हुए हैं, तो वे महात्मा सोच में पड़ जाएंगे, विचार में पड़ जाएंगे, क्या कहूँ। तो साथ वाला आदमी बोलता है कि अरे भाई आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ये वही है। तो उसी क्षण उसका कैसा भाव बदलता है। ये सेठ जी के साथ हुई हुई बात है। एक ब्राह्मण को सपना आया, वो ब्राह्मण यही सोचते सोचते रात को सोया कि मेरी जीवन की आयु तो बीत रही है, बहुत लंबी आयु हो गई, कैसे भगवान मिले, क्या मिले, बेचैन हो गए, सोई आ गए। नींद के अंदर उनको एक विचार आया या कोई सपना आया कि तुम गीता भवन जाओ स्वर्गाश्रम में, वहाँ जयदयाल जी गोविंदका से मिलो, बड़े अच्छे महात्मा है, उनका संग करो। वो जानता ही नहीं था जयदयाल जी कौन है क्या है, वो नाम सुना वो सपने में, तो गीता भवन पहुंच गया। और वो सेठ जी उस समय गीता भवन नंबर 1 से रवाना होकर बटवृक्ष के लिए जा रहे थे, और वो सज्जन नौका से उतर करके गीता भवन के उस गेट में ही जा रहा था। तो इधर से तो सेठ जी का निकलना हुआ और उधर से उसका आना हुआ। उसने कहा कि जयदयाल जी गोविंद का कौन है। सेठ जी ने कहा क्यों, मुझे उनसे जरूरी मिलना है, तो अभी आप आए हो, नहाओ धो भोजन वगैरह करो, फिर मिल लेंगे। कि नहीं, एक बार मुझे पता चल जाए ना कि जयदयाल गोविंद का वहां बैठे हैं यहां बैठे हैं। बस फिर जो है मेरे मन में जो एक बड़ी बेचैनी हो रही है, एक बार देख लूं, फिर नाता धोता रहूं, एक बार देख लूं उनको। सेठ जी ने कहा देख के क्या करोगे, उनसे बातचीत करोगे? बातचीत करना है नहीं, एक बार मैं देख लूं। अब सेठ जी का उधर वे समय, सेठ जी के साथ वाले आदमी को हंसी आई, तो सेठ जी ने, साथ वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा, सेठ जी ने कहा कि जयदयाल गोविंद का तो मेरा ही नाम है। आपका नाम है? आप सेठ जयदयाल जी गोविंद का है? अब वो गए सेठ जी का यूं देखे हूं, आप जयदयाल जी गोविंद का है यूं? कहा अभी तो आप नहाओ दो, मैं सत्संग में जा रहा हूं बट वृक्ष में, कि नहीं मैं ही चलूंगा वहां। आप जयदयाल जी गोविंद का है? तो क्या हो गया, अभी बाद में मिलेंगे। तो ऐसे ही महात्मा मिल जाए तो क्षण भर में किस तरह का भावतार, कैसे भाव बदल जाते हैं। ऐसे सच्चे महात्मा मिल जाए तब हमारे ये बात होती है, भगवान मिल जाते हैं और भगवान को पहचान लेते हैं तो कितना जल्दी हमारा काम बन सकता है। देखो भगवान तो सब जगह ही रहते हैं, प्रकट क्या होता है, भगवान का रूप ही प्रकट होता है, मुखारविंद है, चार हाथ है, वक्षस्थल है, चरणी प्रकट होते हैं, कहीं से आते नहीं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? वे अपने भक्त के अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए प्रकट होते हैं, उसकी बेचैनी मिटाने के लिए प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उसके अंदर अपार आनंद का संचार होता है, भक्त उनके लिए व्याकुल होता है, उतावलापन करता है, व्यग्र हो जाता है, चैन नहीं मिलती। ऐसे में भगवान के अंदर जो स्नेह है वो स्नेह उमड़ता है। उस समय कोई भगवान को ये कहे कि प्रभु इसने तो पहले बहुत पाप किए हैं, आप इसके पापों को तो याद करो, भगवान को बात बहुत बुरी लगती है। तुम्हें क्या मतलब, इसने पाप किया कुछ किया कोई बात नहीं, भगवान उधर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा विश्वास होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करे, आ एकदम आर्थ भाव से होकर करे। केवल रोने से ही काम नहीं चलता है, एक आर्थ भाव कुछ अलग ही प्रकार का होता है। उस आर्थ भाव में रोना पड़ता नहीं है, वो स्वतः ही रोना हो जाता है, फिर भगवान को आए बिना चैन नहीं मिलता है। यदि आर्थ भाव से रोना नहीं आ रहा है तो विश्वास की कमी है। भगवान सब भूतों के प्राण सुहृद हैं। भगवान के लिए भरत जी कह रहे हैं कि भगवान आए नहीं, बात क्या है, मेरे में कोई अवगुण है? नहीं नहीं नहीं, जन अवगुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति सरल स्वभाव। भक्त का अवगुण तो भगवान देखते ही नहीं है, वे तो दीन बंधु बड़े कोमल स्वभाव वाले हैं। मोरे मन भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। बड़े अच्छे शगुन हो रहे हैं, राम जी तो मुझसे मिलेंगे। तो भरत जी जब ऐसी बात कर रहे हैं, उधर भगवान अयोध्या से, लंका से अयोध्या के लिए पुष्पक विमान में रवाना हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की पुकार एक अलग ही होती है। भगवान हमारे पुकारने से नहीं आते, भगवान के अंदर दयालुता है, वो अपने दयालु स्वभाव के विवश हैं। उनसे दीन आदमी की दीनता, आतुर की आतुरता देखी नहीं जाती, उस स्वभाव से भगवान आते हैं, ऐसा विश्वास हो। सच्चे रोने का कितना महत्व है, आवश्यकता होने पर भगवान रुक नहीं सकते हैं। हमारे मिलने की इच्छा में, दर्शन में कमी है, इसीलिए भगवान का वियोग सह रहे हैं। जिससे वियोग नहीं सह जाता उससे तुरंत मिलने की इच्छा होती है, उससे मिलने के लिए लोग बड़े आतुर होते हैं। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके बैठे हुए हमको क्यों देरी हो रही है, आप तो हमारे परम सुहृद हो, फिर देरी क्यों करते हो। आप ये कहोगे कि तुम्हारे मिलने की भूख नहीं है, हमारे तो भूख नहीं सही, हमारी भूख को देखकर आप आओगे क्या, हमारी भूख को मत देखो, आप तो अपने स्वभाव की तरफ देखो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान पहले निराकार रूप से आते हैं, पीछे साकार रूप से आते हैं। पहले रोम रोम में ज्ञान प्रकाश आनंद का संचार होता है, पीछे बिजली के समान प्रकट हो जाते हैं। रोने वाले भक्तों में तो हमको भरत जी का उदाहरण सबसे अच्छा लगा है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे तुलसीकृत रामायण हो, हमको तीनों में ही भरत जी का उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। भरत जी में किस प्रकार से भगवान राम जी के लिए व्याकुलता थी, किंतु इस समय तो भरत जी से भी अधिक व्याकुल होने की आवश्यकता है। भरत जी महाराज शुरू में आने से ही माता जी से, पिताजी का पूछा कि वे कहाँ है। माता जी ने कहा कि वो तो उनकी मृत्यु हो गई, वे तो बहुत ऊंचे स्थान पर गए। तब भरत जी ने कहा कि अच्छा, मृत्यु तो होनी है, अंतिम समय में उन्होंने क्या कहा, मुझे राम जी के हाथ में सौंप दिया होता तो कितना अच्छा रहता। तब माता जी ने सारी बात सुनाई, सुनते ही भरत जी बेहोश हो गए, गिर पड़े, जैसे तालाब से निकलकर कोई मछली को जिलाना चाहते हो तो मछली कैसे तड़पती है, उसी तरह माँ उनको जो बात बोलती है, भरत जी एकदम तड़पने लग गए, उसकी बात का विचार ही नहीं किए। भरत जी सावधान हुए और केके के ऊपर बड़े नाराज हो गए और कहा कि मैं तेरा सिर काट देता, किंतु इसलिए नहीं कि राम माता जी क्यों इसलिए नहीं काट रहा हूं, इसलिए नहीं मारता हूं कि राम जी मुझे त्याग देंगे, उन्हीं के बल पर तू जी रही है। फिर भरत जी कौशल्या माता के पास गए, तब बड़ा विलाप किया। कौशल्या जी के पास बहुत ज्यादा विलाप क्यों किया, क्योंकि भरत जी को राम जी के वियोग में एक और भगत मिल गया। कौशल्या भी तो उनके वियोग में थी, एक तरफ कौशल्या के पति की मृत्यु है और दूसरी तरफ राम के वनवास का कष्ट है, तो कौशल्या के मन में राम के बिछो का बहुत दुख हो रहा है, इतना दशरथ जी का नहीं है। इसलिए भरत जी कौशल्या माँ की गोद में चिपट करके रोने लग गए, बहुत विलाप किया। क्योंकि दो विरही मिलते हैं तब भगवान का विरह रुक नहीं सकता है। कौशल्या जी ने भरत के दर्द को समझ लिया। भरत जी बहुत रोए, तब कौशल्या जी ने अपने कपड़े से उनके आंसू पूंछे, अपने छाती से लगा के कहा, राम के वन में जाने का दोष कोई केकई पर भले ही लगाए, परंतु तुमको तो हृदय से वे बहुत प्यारे हैं। फिर जब गुरु महाराज की राज्य की आज्ञा हुई तो भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूं, अपने सब मिलकर भगवान राम को मना कर लाओ। तब सब पैदल चले, किसी की भरत जी से यह कहने की हिम्मत नहीं रही कि आप सवारी पर बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे सब पैदल चल रहे हैं, हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी बहुत कोई बात चली भी तो उन्होंने इतना ही कहा कि इन्हीं रास्तों से राम जी पैदल गए हैं और मैं यहां अयोध्या का वाहन लेकर इस पर बैठकर जाऊंगा, तो ये राजा के समान ही चलना हुआ, तो इसका मतलब मैंने कैकेयी का दिया हुआ राज्य ले लिया है, मैं पैदल ही जाऊंगा। पैदल क्या, मुझे तो उनके जहां चरण रखे वहां सिर के बल पर जाना चाहिए। ये बात जब माता कौशल्या को पता चली तब कौशल्या जी अधीर होकर कहने लगी, बेटा या तो तुमको मेरी आज्ञा माननी चाहिए। भरत जी तत्काल पालकी में बैठ गए। भरत जी के समान व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वे इतने दयालु हैं कि आपको भरत के समान व्याकुल की शर्त नहीं रखते हैं। आप भरत जी से आधे ही व्याकुल हो जाओ भरत जी के समान, भगवान उसमें भी मिलने के लिए तैयार हैं। कभी कभी आपको सत्संग में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, कोई आपको सत्संग की बात सुनने पर एक प्रकाश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान आपसे मिल रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश साक्षात भगवान का रूप है। कितनी शांति, कितना आनंद, आप उस आनंद के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो भगवान का ही रूप है, वो निर्गुण निराकार रूप है। भगवान विज्ञान आनंद घन शांति के रूप में विराजमान है। सगुण में उनके मुख से प्रेम और आनंद का अमृत चू रहा है। कभी कभी ऐसे ध्यान करो जैसे किसी आदमी के चेहरे पर खूब पसीना आता हो और वो पसीना उसके चेहरे पर जगह जगह दिखता हो, ऐसे भगवान के मुख के ऊपर प्रेम और अमृत पसीने के समान झर रहा है। भगवान का सुंदर और गोल मुखारविंद और उसमें फिर अमृत का बरसना, इस ध्यान के अंदर जो एक आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में कोई न कह सकता है न कोई समझ सकता है। मुखारविंद कितना सुंदर है, सारे शरीर से अमृत अमृत बरस रहा है। ऐसे समय में भगवान के चरण स्पर्श की हिम्मत यदि हो जाए, एक बार ध्यान में यूं चरण स्पर्श हो जाए, रोमांच हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर में एक अद्भुत कंपन हुआ हो। बड़ी विचित्र बात होती है, बड़ी शांति होती है। नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, ऐसे लेख अपने को मिल जाते हैं सुनने के लिए। भगवान की कोई कृपा है, श्री जी महाराज की कोई कृपा है अपने पर। इस युग में ऐसी बातें कहां मिले हैं। संवत 1993 है, अपने जन्म से पहले की बातें हैं, और आज मिल जाए ये बातें। ये ध्यान से सुनने पर अंदर तो जमा होती है। ये बता दिया ना कि सत्संग में जो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, ये भगवत प्राप्ति है।
काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जाई जो जी। काया ने सिंगार कोयलिया पनबंडली मत जाई जो जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अध बिच में रुल जाओ जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अध बिच में रुल जाओ जी। काया ने सिंगार कोयलिया गेरो गेरो रूक वो हीड़ रुकी जे वो फुलड़ो मत लाई जो जी। गेरो गेरो रूक रो हीड़ रुकी जे वो फुलड़ो मत लाई जो जी। छोटो फूल बड़ो कर मानो छोटो फूल बड़ो कर मानो फूल हजारी गुल लाई जो जी। छोटो फूल बड़ो कर मानो फूल हजारी गुल लाई जो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जय जो जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अध बिच में रुल जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया खारे समंदरो खारो पानी वो पानी मत लाई जो जी। खारे समंदरो खारो पानी वो पानी मत लाई जो जी। थोड़ो नीर घनो कर मानो नीर गंगा जल लाई जो जी। थोड़ो नीर घनो कर मानो थोड़ो नीर घनो कर मानो नीर गंगा जल लाई जो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जाई जो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली रा नहीं भरोसा अध बिच में रुल जावो जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अध बिच में रुल जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जाई जो जी। अबट वन में उबो खेजड़ो उन छाया मत जाई जो जी। अबट बहन में उबो खेजड़ो उन छाया मत जाई जो जी। अगमनि समरा बाजे बायरा कांटा में रुल जावो जी। अगमनि समरा बाजे बायरा कांटा में रुल जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जय जो जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अदविच में रुल जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया भाई मीरा री सच्ची मंडली उन मंडली भल जय जो जी। भाई मीरा री सच्ची मंडली उन मंडली भल जय जो जी। उन मंडली रा खरा भरोसा डूबतड़ा तिर जावो जी। उन मंडली रा खरा भरोसा डूबतड़ा तिर जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जय जो जी। परमंडली रा नहीं भरोसा अद्वित में रुल जावो जी। काया ने सिंगार कोयलिया परमंडली मत जय जो जी। काया ने सिंगार कोयलिया।